And welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू.
और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस एंड इन नेगेटिव जोन. Sensex falls over 100 points. Nifty settles below 26,150. Major Asian stock markets close mixed. And Cabinet approves three new corridors as part of Delhi Metro's expansion project worth around 12,015 crore rupees.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में रहे. सेंसेक्स में 100 अंकों से अधिक की गिरावट आई. निफ्टी 26,150 के नीचे हुआ बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में रुख मिला जुला रहा. और कैबिनेट ने करीब 12,015 करोड़ रुपए की लागत की दिल्ली मेट्रो की विस्तार योजना के तहत तीन नए कॉरिडोर को दी मंजूरी.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब लेते हैं शेयर बाजार की खबर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी क्रिसमस की छुट्टी से एक दिन पहले आज मामूली गिरावट पर बंद हुए. दोनों सूचकांक मंदी के साथ खुले. हालांकि कारोबार के पहले कुछ मिनटों में वे सकारात्मक स्थिति में आ गए, लेकिन सत्र के दूसरे भाग में बिकवाली के दबाव से सूचकांकों में फिर मंदी आ गई और कारोबार की समाप्ति पर वे मामूली गिरावट पर बंद हुए. सेंसेक्स 116 अंक कम होकर 85,409 पर बंद हुआ और निफ्टी 35 अंकों के नुकसान से 26,142 पर बंद हुआ. बंबई शेयर बाजार के विस्तारित बाजार में भी गिरावट का रुख था. मिड कैप सूचकांक लगभग 0.4% गिरकर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% से अधिक गिरावट दर्ज हुई.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एंडेड द सेशन विद मार्जिनल लॉसेस टुडे अहेड ऑफ क्रिसमस हॉलिडे. बोथ इंडेक्सेस ओपन्ड लोअर बट ब्रीफली मूव्ड इनटू पॉजिटिव टेरिटरी विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग. However, selling pressure in the second half of the session dragged the indices lower and they eventually closed slightly down. The Sensex fell by 116 points to close at 85,409, while the Nifty dipped 35 points to settle at 26,142. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in negative zone. The mid-cap index settled nearly 0.4% down and the small-cap index lost over 0.1%.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 17 के शेयर गिरावट में रहे. सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियों में इंडिगो को 1.4%, सन फार्मा को 1% और एशियन पेंट्स तथा रिलायंस दोनों के शेयर में 0.8% से अधिक गिरावट दर्ज हुई. सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियों में ट्रेंट का शेयर 2.3% से अधिक के उछाल में रहा. अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 0.9% और मारुति सुजुकी के शेयर में 0.6% से अधिक बढ़त दर्ज हुई.
अक्रॉस सेक्टरल इंडेक्सेस ऑफ द बीएसई 18 आउट ऑफ 22 सेक्टर्स रजिस्टर्ड लॉसेस. Among the top laggards, oil and gas declined almost 0.8%, focused IT dropped nearly 0.7%, and services lost over 0.6%. In the top gainers, telecommunications climbed over 0.2%, realty ended marginally up, and commodities eked out a slight gain. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,346 companies declined, 1,841 advanced and 145 remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर हुआ और 89.78 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.85 पर था। मिस्टर भट्टाचार्य, आज लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है बाजार, बहुत ही हल्की गिरावट है। कल भी फ्लैट बंद हुआ था और उससे पहले के दो सेशंस में 1100 अंकों की कुल तेजी आई थी बाजार में। अभी आप कैसे देखते हैं बाजार की धारणा को, और अब कैलेंडर वर्ष खत्म होने वाला है 2025-2026 के लिए, क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं आपको?
देखिए, जो मार्केट जो आज रहा है वो तो वॉलेटाइल थोड़ा बहुत है, पर ये मूवमेंट काफी नैरो रेंज में हुआ है। सिलेक्ट प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है थोड़ी बहुत, और जो सेक्टर्स में थोड़ी बहुत जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ समस्याएं आ रही थी, उन सेक्टर में जरा कमी नरमी दिखी। पर जो ओवरऑल मार्केट का जो रुख दिख रहा है वो नए ट्रिगर की आशा में ट्रिगर ढूंढ रहे हैं, किस ट्रिगर से मार्केट अगली कड़ी तक पहुंचे। और मैं समझता हूँ कि जो आरबीआई का जो ऐलान जो था, जो द्विमासिक जो मॉनेटरी वित्तीय मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू में, उससे जो मार्केट में जो लिक्विडिटी डालने की जो कोशिश की गई थी उस डिसीजन से, और वो लिक्विडिटी अब आने वाली है, आरबीआई के डिसीजंस भी आ रहे हैं किस तरह से करीबन 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी एक्स्ट्रा लाएंगे
जी।
और जो बजट जो फरवरी के पहली फरवरी या 31 जनवरी या 2 फरवरी में जो बजट जो आएगा, उससे भी काफ़ी एक नया एक ट्रिगर आ सकता है। अगर विश्व की ओर देखें, जो अनिश्चयता का जो माहौल चला था वो चल रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि 2026 में भी ये वैश्विक स्तर में जो अनिश्चयता का जो माहौल है वो एकदम दूर नहीं हो जाएगा। अगर भारत की ओर देखें तो भारत का के साथ जो यूएस का एक टैरिफ डील होने वाला था वो लगता है अभी जनवरी में उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और जो यूएस और वेनेजुएला के साथ जो संपर्क उनके बिगड़ गए हैं, उनके ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक हो रहा है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मार्केट में। अगर ऑयल सेक्टर को देखेंगे, आज भी जो ऑयल स्टॉक्स नीचे गए हैं, तो विश्व की जो अवस्था जो है, स्थिति जो है, उससे हम एकदम जुड़े हुए हैं। और अगर वैश्विक अवस्था अगर अनिश्चितता की एक दौर से गुजरे, मैं समझता हूँ कि अगले 2026 में भी वही चीज हमें संभालना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि एक जो आरबीआई की जो लिक्विडिटी पॉलिसी है, एक न्यूट्रल स्टांस जो दिया है, और बजट में क्या आता है उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट की अगली कड़ी में हम उसका।
मिस्टर भट्टाचार्य, मेटल्स, मीडिया, एफएमसीजी एंड पीएसयू नेम्स वर रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स हेल्पिंग द निफ्टी hold near record territory. How would you describe the short-term technical picture of the market?
Well, I think, you have to look at the stock market in today's context in a very stock-specific way. You mentioned
metals.
Now, Coal India has done very well. Yeah. That's because they are going in for a listing of one of their subsidiaries, which is the Southeastern Coal Limited. So as a result, Coal India has done well. You talked about another sector that you talked about was
media, FMCG and PSU.
PSUs. So in the FMCG sector, you are seeing some sort of a demand revival. एंड दैट प्रोबेबली हैज पुश्ड इट अप एंड द सर्विसेज सेक्टर इज ऑल्सो डन वेल पर्टिकुलरली बायोड बाय द काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट आर कमिंग इन पर्टिकुलरली इन द फाइनेंशियल सेक्टर द ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट इन द फेडरल बैंक इज गोइंग टू पुश अप द बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स सिमिलरली देर आर मेनी अदर the Japanese funding agencies. So I think the stock market is no longer a broad index story. The stock market is a specific stock story now. So if you want to invest in the stock market, you have to look at specific sectors, specific stocks, wherein they are reacting to developments that are happening around them and in the markets, not only nationally, but also internationally.
Okay, how are the FIIs and DIIs influencing the market dynamics today and going forward?
Well, to a great extent, the FPI's response has been determined not just by the fact that the Indian stock markets were slightly expensive, but they have lost some of that expensiveness, if I may use that word. But the rupee depreciation has made probably a little made the market a little more attractive in the short term because everybody is acknowledging that the rupee has depreciated from around 88 to 1991. It is settling down at that level. So if you have entered at this stage, and you realize that the rupee may recover a little bit of its lost ground, then the FPIs may benefit. So that is right now playing to its to its benefit. But the domestic institutional investors is largely fueled not by direct retail investors, but also by largely by the mutual fund industry.
Okay.
And mutual fund industry has done very well in 2025, and there is no reason why they should not continue to do well in the coming calendar year, because the overall the fundamentals of the market, of the economy, are more or less stable. As I said previously, that the budget will hold a few tricks up its sleeve, and let us see what the budget unveils.
So, आप कह रहे हैं कि FPIs, FIIs ने सेलिंग की है इस वर्ष में, कई बार वो नेट सेलर्स रहे, लेकिन जो DIIs यानी डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका जो रवैया रहा बाय ऑन डिप्स, उन्होंने ओवर कॉम्पेंसेट किया FIIs के जो सेलिंग थी उसको, एंड आप आशा करते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा।
एकदम सही कहा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जहाँ भी एफपीआई ने जो उन्होंने जो बिकवाली करके बाहर निकल गए, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे आकर बाय इन डिप्स, जैसे आपने कहा, उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रिटेल या म्यूचुअल फंड से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, वो वही एक अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाएंगे।
अब चलते हैं अगली खबर की ओर राजेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,015 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो के 5A चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस चरण के अंतर्गत 3 मेट्रो कॉरिडोर आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज को मंजूरी दी गई है और 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस विस्तार के साथ दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मेट्रो क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
ये जो 3 आज कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़, एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर 1,419 करोड़, तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर 1,024 करोड़। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव।
और हमारे संवाददाता ने इसके बारे में विस्तार से बताया, आइए सुनते हैं।
दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन के 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी परिवहन को एक नई दिशा दी है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो द्वारा लगभग 395 किलोमीटर के नेटवर्क पर कुल 12 मेट्रो लाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 289 स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो आज राजधानी की जीवन रेखा बन चुकी है और प्रतिदिन औसतन 65 लाख लोग इससे यात्रा कर रहे हैं। आज स्वीकृत किए गए 3 नए कॉरिडोर से दिल्ली में आवागमन और आसान होगा, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत एक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की और दिल्ली वहां की राजधानी है। इस तरह का जो विस्तार हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में, जो आज अनाउंसमेंट हुई है 3 नए कॉरिडोर्स की, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
देखिए, एक बहुत एक जरूरी कदम था। मैं समझता हूं कि जो मेट्रो नेटवर्क जो है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक छवि है, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण छवि है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल नहीं बनाए तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, लाइफस्टाइल है, ईज़ ऑफ लिविंग है, वो सब में बाधा आ सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मेट्रो नेटवर्क, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर मेट्रो की तरह से उनका प्रसार मिले तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो वायु प्रदूषण की जो एक समस्या जो आ रही है उसको भी संभालने में सहायता करेगी। पर हाँ, जब ये कंस्ट्रक्शन चालू होंगे उसमें कंस्ट्रक्शन में तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, पर इनका जो
नो गेन विदाउट पेन,
पर इसका जो फल जो होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और एक्सेस बढ़ेगी लोगों की, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होगी और पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा बहुत एक अंकुश भी लगेगा।
Moving on, the global investment banking firm Goldman Sachs has forecast India's real GDP growth at around 6.7% in 2026 and 6.8% in 2027, outpacing consensus estimates and reinforcing India's position among the world's fastest growing large economies. According to Goldman Sachs Global Economics Analyst Report, Macro Outlook 2026. India's growth trajectory is supported by strong domestic consumption, sustained public infrastructure spending, and relatively limited exposure to global trade disruptions compared with export-dependent economies. The investment firm also noted that global growth is projected at 2.8% in 2026, higher than the consensus forecast of 2.5%. Mr. Bhattacharya, with the real GDP growth above 8% and inflation well within the tolerance band, India, as we also read from this report, is growing faster than most large economies while maintaining macro stability. Now, do you expect this to be sustainable in the coming year?
Well, quite a few issues will be important to keep in mind. You have to see in what way the recent rationalization of the GST rates help boost demand, because without boosting demand, the big question that you have raised, the sustainability of the growth rate, will be an important factor. We have to see how the income tax rate cuts that were announced in the last budget actually play out in terms of people having more disposable surpluses and spending in the market. So these are early days. We have to see in what way the people go in and spend more, consume more, so that the economy, the engine of the economy, is sustained not just by investment but also by consumption. The first half of the year has done very well. As a matter of fact, if you look at the world, even the U.S. has come out with a very good number of 4.3% growth. Now, and India has done particularly well on the trade side, in a sense that if you look at the earlier fears about trade so far, the adverse impact of the tariff threats from the U.S. Has not actually impacted us hugely. On the contrary, there are many sectors where India has found alternative markets, particularly in the areas of shrimp, for example, or gems and jewelry. So therefore, one has to remain very cautious. First half has done very well. Second half, I have a feeling there may be some sort of a deceleration. Mm. But achieving 6.7% growth, as Goldman Sachs is estimating, should be expected. But as you rightly pointed out, the real challenge would be how do you make sure both consumption and investment, both the legs of the economy are kept active.
Moving on, the National Highway Authority of India, NHAI, has received approval from the Securities and Exchange Board of India for its sponsored Rajmarg Infra Investment Trust, RIIT, as an infrastructure investment trust, INVIT, marking a significant step in strengthening NHAI's asset monetization program. The Ministry of Road Transport and Highway, in a statement, said that the public INVIT aims to unlock the monetization potential of national highway assets while creating a high-quality, long-term investment instrument primarily targeted at retail and domestic investors. The initiative is expected to broaden public participation in the country's national highway infrastructure growth. Commenting on SEBI's approval, NHAI Chairman Santosh Kumar Yadav said, "The clearance represents an important milestone in expanding public participation in national highway infrastructure development. The RIIT is expected to play a pivotal role in deepening domestic retail investor participation and accelerating the development of a robust national highway network across the country." How important is this news with NHAI getting SEBI's approval?
This is very, very important. You know, as you rightly pointed out, there are two things are sought to be achieved. One is the asset monetization. What does asset monetization do? It doesn't mean that NHAI will be selling its assets. It only means that NHAI will be able to get adequate revenues out of its assets, which are roads. Mm-hmm. That's one. And the second is that it will encourage public participation in building of roads, which are critical infrastructure for sustaining the kind of growth that we just now talked about. I mean, if you want to achieve the growth rate of 6.7 or 7% right. or 8%, mm-hmm. you need investment in infrastructure areas, particularly roads. Mm-hmm. Three, it better roads connects markets with other markets, connects consumers with markets. And if NHAI can actually speed up its investments and implementation of these projects in good time and within maintaining the schedule, then what happens is consumers and markets get connected more closely and more efficiently and effectively. So while at one level it will help NHAI to become less dependent on government funding, which means the government can use that money for more critical sectors like health and education. At another level, NHAI will be able to get public money through the sale of its shares in the trust, because you know it's a closed-ended trust and it's a closed-ended fund. So once people are interested in investing there, their money goes there, they get their return. So people are investors, get their return, and NHAI uses that money to invest in roads, new roads, and more roads. So I think it's a good decision that has been taken.
Okay.
And NHAI should be able to speed up its project implementation without depending on government financing. Right now, NHAI depends a lot on the government.
और एक और उत्साहजनक खबर जिसकी आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। आरबीआई ने आगामी हफ्तों में खुले बाजार परिचालन ओएमओ और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इसके तहत रिजर्व बैंक ओएमओ के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा।
वर्तमान तरलता और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद 4 किश्तों में की जाएगी। प्रत्येक किश्त 50,000 करोड़ की होगी, जो 29 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। डॉलर रुपया स्वैप नीलामी 13 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि वे तरलता और बाजार स्थितियों में हो रहे बदलावों पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और सुव्यवस्थित तरलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाते रहेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ब्रीफली, बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है आरबीआई का, और जैसे आप कह रहे थे कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट करने की दिशा।
एकदम सही कहा आपने, जो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू देखी थी आपने, उसमें भी उन्होंने इसी के जिक्र की थी और इसी का जो प्रतिफलन हम देख रहे हैं ये आज की ये अनाउंसमेंट में।
आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% के नुकसान में रहा। जापान के निकेई में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली गिरावट पर बंद हुआ। दूसरी ओर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% से अधिक तेजी में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की तरफ नजर डालें तो यहां के प्रमुख बाजार आज क्रिसमस के कारण जल्दी बंद हो गए। फ्रांस के कैक में 0.1% से अधिक की बढ़त आई और लंदन के फुटसी में हालांकि कारोबार अभी चल रहा था 0.2% की गिरावट थी। इस बीच जर्मनी का बाजार आज क्रिसमस ईव के कारण बंद था।
Wall Street closed higher yesterday for a fourth consecutive session, with artificial intelligence-related stocks continuing to outperform during the holiday-shortened week. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index advanced almost 0.6%, the S&P 500 gained nearly 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average added around 0.2%. Global crude oil prices were moderately up today, supported by robust U.S. economic growth and the risk of supply disruptions from Venezuela and Russia. Brent crude was trading 0.3% up at $62.56 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.4% up at $58.63 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% up at 1,38,780 rupees per 10 grams, and silver was trading 1.8% up at 2,23,960 rupees per kilogram.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 0.4% से अधिक बढ़कर 1,38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% की तेजी से 2,23,986 रुपए प्रति किलो पर थी। लगातार रिकॉर्ड्स छू रही हैं कीमतें सोने चांदी की। सोना लगभग 70% बढ़ा है और चांदी 140%। आपको लगता है यही ट्रेंड
रहेगा? आश्चर्य होने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि जब मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है तब लोग एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, वो ज्यादातर सोना और सिल्वर चांदी में जाकर वो अपना जो रिस्क जो है, प्रोफाइल जो है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए मिस्टर भट्टाचार्य, और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए।
नमस्कार, धन्यवाद।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices end in negative zone. Sensex falls over 100 points. Nifty settles below 26,150. Major Asian stock markets close mixed, and cabinet approves 3 new corridors as part of Delhi Metro's expansion project worth around 12,015 crore rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।